Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE November 2021 examination in Hindi as a second language. Paper 2, Listening Comprehension. Turn over now.
अभ्यास 1, प्रश्न 1 से 6. प्रश्न 1 से 6 के लिए आप क्रमानुसार कुछ संक्षिप्त संवाद सुनेंगे. उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए. आपके उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए. आपको प्रत्येक संवाद दो बार सुनाया जाएगा.
संवाद एक.
कृपया ध्यान दीजिए, स्टेशन परिसर में भीड़ की वजह से कुछ समय के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में प्रवेश बंद कर दिया गया है. सिग्नल खराब हो जाने की वजह से मेट्रो सेवाएं देरी से चल रही हैं. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यातायात के वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करें. रीगल सिनेमा और खड़क सिंह मार्ग से विशेष बस सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं. आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है. कृपया ध्यान दीजिए, स्टेशन परिसर में भीड़ की वजह से कुछ समय के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में प्रवेश बंद कर दिया गया है. सिग्नल खराब हो जाने की वजह से मेट्रो सेवाएं देरी से चल रही हैं. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यातायात के वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करें. रीगल सिनेमा और खड़क सिंह मार्ग से विशेष बस सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं. आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है.
संवाद दो.
भैया, एक कोट सिलवाना था.
जरूर बहन जी, मास्टर जी को अपना नाप दे दीजिए.
कितनी देर लगेगी? क्या मास्टर जी बहुत व्यस्त हैं?
नहीं, बस दो मिनट. वैसे आपको कोट कब तक चाहिए?
अगले हफ्ते तक.
आप मजाक तो नहीं कर रही? कम से कम एक महीना लगेगा.
एक महीना? दर्जी छुट्टी पर गए हैं क्या?
नहीं बहन जी, शादी का मौसम चल रहा है.
भैया, एक कोट सिलवाना था.
जरूर बहन जी, मास्टर जी को अपना नाप दे दीजिए.
कितनी देर लगेगी? क्या मास्टर जी बहुत व्यस्त हैं?
नहीं, बस दो मिनट. वैसे आपको कोट कब तक चाहिए?
अगले हफ्ते तक.
आप मजाक तो नहीं कर रही? कम से कम एक महीना लगेगा.
एक महीना? दर्जी छुट्टी पर गए हैं क्या?
नहीं बहन जी, शादी का मौसम चल रहा है.
संवाद तीन.
कृपया ध्यान दें, कुटीर उद्योग एम्पोरियम के द्वार शाम 8 बजे बंद हो जाएंगे. लेकिन चिंता न करें, हमारे बिक्री सहायक आपकी खरीदारी और पैकिंग का काम पूरा कराने में आपकी पूरी मदद करेंगे. खरीदी जा रही वस्तु में यदि आप कोई फेरबदल कराना चाहते हैं तो आपको सामान लेने अगले दिन आना होगा. रेस्तरां शाम 9 बजे तक खुला रहेगा, इसलिए आराम से खाने पीने का आनंद लें. केंद्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम में पधारने के लिए आपका धन्यवाद. कृपया ध्यान दें, कुटीर उद्योग एम्पोरियम के द्वार शाम 8 बजे बंद हो जाएंगे. लेकिन चिंता न करें, हमारे बिक्री सहायक आपकी खरीदारी और पैकिंग का काम पूरा कराने में आपकी पूरी मदद करेंगे. खरीदी जा रही वस्तु में यदि आप कोई फेरबदल कराना चाहते हैं तो आपको सामान लेने अगले दिन आना होगा. रेस्तरां शाम 9 बजे तक खुला रहेगा, इसलिए आराम से खाने पीने का आनंद लें. केंद्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम में पधारने के लिए आपका धन्यवाद.
संवाद चार.
बहन जी, कोई ऐसा मटका दिखाइए जिसमें पानी ठंडा रहे।
अरे बाबूजी, हमारे हर मटके में पानी ठंडा रहता है, निश्चिंत रहिए।
नहीं, हम पिछली गर्मियों में बहुत परेशान हुए।
क्यों?
अरे मटका लाते, पानी ठंडा नहीं होता और फेंक देते।
तब तो आप ये मिट्टी कूल वाला मटका ले लीजिए, झंझटी खत्म।
ये रंग बिरंगा टूटी वाला प्लास्टिक का सा लगता है।
बाबूजी, ये 5 मिट्टियों और नई तकनीक से बना है।
बहन जी, कोई ऐसा मटका दिखाइए जिसमें पानी ठंडा रहे।
अरे बाबूजी, हमारे हर मटके में पानी ठंडा रहता है, निश्चिंत रहिए।
नहीं, हम पिछली गर्मियों में बहुत परेशान हुए।
क्यों?
अरे मटका लाते, पानी ठंडा नहीं होता और फेंक देते।
तब तो आप ये मिट्टी कूल वाला मटका ले लीजिए, झंझटी खत्म।
ये रंग बिरंगा टूटी वाला प्लास्टिक का सा लगता है।
बाबूजी, ये 5 मिट्टियों और नई तकनीक से बना है।
संवाद 5।
पाकिस्तान ने चीन को उन्नत जाति के गधे बेचने का प्रस्ताव रखा है। गधों की संख्या के हिसाब से पाकिस्तान दुनिया में 3rd स्थान पर है और चीन 1st स्थान पर। परंतु चीन में गधों की मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि वहां उनका उपयोग यातायात और खेती के साथ साथ दवाएं बनाने में भी होता है। जबकि पाकिस्तान विदेशी मुद्रा कमाने के लिए निर्यात के नए नए रास्ते खोज रहा है। पाकिस्तान के एक प्रांतीय अधिकारी का कहना है कि चीनी कंपनियां पाकिस्तान में गधों की फार्मिंग के लिए करोड़ों रुपए का निवेश करना चाहती हैं। पाकिस्तान ने चीन को उन्नत जाति के गधे बेचने का प्रस्ताव रखा है। गधों की संख्या के हिसाब से पाकिस्तान दुनिया में 3rd स्थान पर है और चीन 1st स्थान पर। परंतु चीन में गधों की मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि वहां उनका उपयोग यातायात और खेती के साथ साथ दवाएं बनाने में भी होता है। जबकि पाकिस्तान विदेशी मुद्रा कमाने के लिए निर्यात के नए नए रास्ते खोज रहा है। पाकिस्तान के एक प्रांतीय अधिकारी का कहना है कि चीनी कंपनियां पाकिस्तान में गधों की फार्मिंग के लिए करोड़ों रुपए का निवेश करना चाहती हैं।
संवाद 6।
नमस्ते डॉक्टर साहब, हैं क्या?
जी हैं तो, लेकिन किसी को देख रहे हैं। आपको कब का समय दिया था?
समय तो नहीं ले सकी, अचानक जरूरत आ पड़ी है।
पर आपको प्रतीक्षा करनी होगी।
लेकिन मैं तो अपनी माँ के लिए मिलना चाहती थी।
ठीक है, उन्हें अंदर ले आइए।
जी नहीं, वे तो घर पर हैं, मैं बस कुछ पूछना चाहती थी।
माफ कीजिए, मैं कुछ समझा नहीं।
ऐसा है, मुझसे उनकी दवा की पर्ची गुम हो गई है। नमस्ते डॉक्टर साहब, हैं क्या?
जी हैं तो, लेकिन किसी को देख रहे हैं। आपको कब का समय दिया था?
समय तो नहीं ले सकी, अचानक जरूरत आ पड़ी है।
पर आपको प्रतीक्षा करनी होगी।
लेकिन मैं तो अपनी माँ के लिए मिलना चाहती थी।
ठीक है, उन्हें अंदर ले आइए।
जी नहीं, वे तो घर पर हैं, मैं बस कुछ पूछना चाहती थी।
माफ कीजिए, मैं कुछ समझा नहीं।
ऐसा है, मुझसे उनकी दवा की पर्ची गुम हो गई है।
यह अभ्यास 1 का अंतिम संवाद था। थोड़ी देर में आप अभ्यास 2 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 2 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास दो, प्रश्न सात।
लंदन के शाही किले टावर ऑफ लंदन के संग्रहपाल पॉल मर्चेंट के साथ एशियन आई की संवाददाता स्मृति मेहता की बातचीत को ध्यान से सुनिए और नीचे छोड़े गए खाली स्थानों ए से एच को भरिए। यह बातचीत आपको दो बार सुनाई जाएगी।
पॉल मर्चेंट साहब, एशियन आई के पाठकों की ओर से आपका स्वागत है।
शुक्रिया स्मृति जी।
पॉल साहब, कोहिनूर हीरा शायद हमेशा से ही टावर ऑफ लंदन की यात्रा पर आने वाले सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा है, इसकी खास वजह क्या है?
स्मृति जी, इसकी वजह इस हीरे का लंबा और दिलचस्प इतिहास है जिसमें कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग मानते हैं कि ये हीरा लगभग 5000 साल पहले महाभारत के काल में मिला था और इसका प्राचीन नाम श्यामंतक मणि था। लोग ये भी मानते हैं कि इसमें कोई जादुई शक्ति है, क्योंकि ये हीरा जिसके पास जाता है उसी का राजपाट चलता है।
ठीक है, ये सब तो कहानियों की बातें हैं, पर इतिहास क्या कहता है?
जहां तक इतिहास का प्रश्न है, कोहिनूर किस खान से निकला था इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। माना यह जाता है कि यह कृष्णा नदी के पास कोल्लूर की खदानों से मिला था, जो इन दिनों आंध्र प्रदेश में है। कोहिनूर का पहला जिक्र मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में मिलता है। बाबर ने लिखा है कि दक्षिण भारत के काकतीय राजाओं के पास एक बहुत बड़ा हीरा होता था। काकतीय राजा प्रताप रुद्र ने दिल्ली की सल्तनत से संधि करने के लिए उसे अलाउद्दीन खिलजी को दिया और पानीपत की लड़ाई में जीत के बाद हुमायूं ने यह हीरा अपने पिता बाबर को भेंट कर दिया। लेकिन उस समय इस हीरे का नाम कोहिनूर नहीं था।
तो फिर इस बहुमूल्य हीरे का नाम कोहिनूर किसने और कब रखा?
फारस के बादशाह नादिर शाह ने। 18वीं सदी में मुगल शासन के कमजोर पड़ जाने के बाद नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और अपने सैनिकों को शहर में मनमानी की इजाजत दे दी। उन्हें रोकने के लिए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने नादिर शाह को ढेर सारे जवाहरात दिए थे, जिनमें यह हीरा भी शामिल था। नादिर शाह इस हीरे से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसका नाम कोहे नूर रख दिया, जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़।
तो क्या अंग्रेजों को कोहिनूर हीरा फारस से मिला था?
नहीं, कुछ वर्षों बाद पंजाब के सिख महाराजा रणजीत सिंह ने फारस के शहजादे को एक लड़ाई में बंदी बना लिया था और उसे छोड़ने के लिए कोहिनूर की मांग रखी थी। फारस के शाह को वह शर्त माननी पड़ी और कोहिनूर लौटा दिया। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद अंग्रेजों ने सिखों को हराकर यह हीरा अपने कब्जे में ले लिया और अंग्रेज वायसराय डलहौजी ने इसे ब्रितानी महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया।
पॉल साहब, कोहिनूर कितना बड़ा है और क्या इसकी कीमत का कोई अंदाजा है?
नहीं, कोहिनूर इतना दुर्लभ हीरा है कि इसे अनमोल कहा जाता है, लेकिन जौहरियों का कहना है कि नीलाम होने पर इसकी बोली $1 अरब से भी ऊपर जा सकती है। ये तो तब है जबकि घटते घटते आजकल ये हीरा 793 कैरेट से केवल 105 कैरेट का ही रह गया है, क्योंकि इसकी चमक बढ़ाने के लिए इसे एकाधिक बार तोड़ा तराशा गया।
पॉल मर्चेंट साहब, कोहिनूर के बारे में इतनी रोचक जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद।
अभ्यास दो की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे। पॉल मर्चेंट साहब, एशियन आई के पाठकों की ओर से आपका स्वागत है।
शुक्रिया स्मृति जी।
पॉल साहब, कोहिनूर हीरा शायद हमेशा से ही टावर ऑफ लंदन की यात्रा पर आने वाले सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा है, इसकी खास वजह क्या है?
स्मृति जी, इसकी वजह इस हीरे का लंबा और दिलचस्प इतिहास है जिसमें कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पर, कुछ लोग मानते हैं कि ये हीरा लगभग 5000 साल पहले महाभारत के काल में मिला था और इसका प्राचीन नाम श्यामंतक मणि था। लोग ये भी मानते हैं कि इसमें कोई जादुई शक्ति है, क्योंकि ये हीरा जिसके पास जाता है उसी का राजपाट चलता है।
ठीक है, ये सब तो कहानियों की बातें हैं, पर इतिहास क्या कहता है?
जहां तक इतिहास का प्रश्न है, कोहिनूर किस खान से निकला था इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। माना यह जाता है कि यह कृष्णा नदी के पास कोल्लूर की खदानों से मिला था, जो इन दिनों आंध्र प्रदेश में है। कोहिनूर का पहला जिक्र मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में मिलता है। बाबर ने लिखा है कि दक्षिण भारत के काकतीय राजाओं के पास एक बहुत बड़ा हीरा होता था। काकतीय राजा प्रताप रुद्र ने दिल्ली की सल्तनत से संधि करने के लिए उसे अलाउद्दीन खिलजी को दिया और पानीपत की लड़ाई में जीत के बाद हुमायूं ने यह हीरा अपने पिता बाबर को भेंट कर दिया। लेकिन उस समय इस हीरे का नाम कोहिनूर नहीं था।
तो फिर इस बहुमूल्य हीरे का नाम कोहिनूर किसने और कब रखा?
फारस के बादशाह नादिर शाह ने। 18वीं सदी में मुगल शासन के कमजोर पड़ जाने के बाद नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और अपने सैनिकों को शहर में मनमानी की इजाजत दे दी। उन्हें रोकने के लिए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने नादिर शाह को ढेर सारे जवाहरात दिए थे, जिनमें ये हीरा भी शामिल था। नादिर शाह इस हीरे से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसका नाम कोहे नूर रख दिया, जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़।
तो क्या अंग्रेजों को कोहिनूर हीरा फारस से मिला था?
नहीं, कुछ वर्षों बाद पंजाब के सिख महाराजा रणजीत सिंह ने फारस के शहजादे को एक लड़ाई में बंदी बना लिया था और उसे छोड़ने के लिए कोहिनूर की मांग रखी थी। फारस के शाह को वह शर्त माननी पड़ी और कोहिनूर लौटा दिया। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद अंग्रेजों ने सिखों को हराकर यह हीरा अपने कब्जे में ले लिया और अंग्रेज वायसराय डलहौजी ने इसे ब्रितानी महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया।
पॉल साहब, कोहिनूर कितना बड़ा है और क्या इसकी कीमत का कोई अंदाजा है?
नहीं, कोहिनूर इतना दुर्लभ हीरा है कि इसे अनमोल कहा जाता है, लेकिन जौहरियों का कहना है कि नीलाम होने पर इसकी बोली $1 अरब से भी ऊपर जा सकती है। ये तो तब है जबकि घटते घटते आजकल ये हीरा 793 कैरेट से केवल 105 कैरेट का ही रह गया है, क्योंकि इसकी चमक बढ़ाने के लिए इसे एकाधिक बार तोड़ा तराशा गया।
पॉल मर्चेंट साहब, कोहिनूर के बारे में इतनी रोचक जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद।
अभ्यास 2 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 3 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 3 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 3 प्रश्न 8 से 15।
शिक्षा शास्त्री प्रोफेसर गार्गी कलबाग के साथ युवमंच के प्रस्तुतकर्ता अरुण दिवाकर की बातचीत को ध्यान से सुनिए और नीचे दिए गए प्रत्येक कथन में रेखांकित की गई गलती को सही शब्दों या वाक्यांश का प्रयोग करते हुए ठीक कीजिए। यह बातचीत आपको 2 बार सुनाई जाएगी।
प्रोफेसर गार्गी कलबाग, आज के युवमंच में आपका स्वागत है।
धन्यवाद अरुण जी।
गार्गी जी, बिल गेट्स ने एक बातचीत में कहा था कि आने वाले समय में रोजगार उन्हीं को मिलेंगे जो अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग और विज्ञान के विषय पढ़ेंगे, लेकिन औसत छात्रों को ये विषय कठिन लगते हैं। क्या कोई तरीका है इन्हें सुगम और लोकप्रिय बनाने का?
देखिए अरुण जी, विषय कठिन नहीं होते, पढ़ने और पढ़ाने के तरीके उन्हें कठिन बनाते हैं। स्कूलों में जिस तरह की किताबी रट्टा प्रणाली से विषय पढ़ाए जाते हैं, वह उन्हें कठिन ही नहीं बल्कि जीवन के लिए निरर्थक भी बनाती है। स्कूलों और कॉलेजों से पढ़कर निकलने वाले औसत छात्रों का प्रायोगिक ज्ञान ना के बराबर ही होता है, इसलिए उनको रोजगार पाने में कठिनाई होती है।
आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इसका विकल्प क्या है?
विकल्प है शिक्षा प्रणाली में सुधार, लेकिन इस सुधार की पहल लोगों को करनी होगी और कुछ लोग कर भी रहे हैं। मिसाल के तौर पर शिकागो से पढ़े एक इंजीनियर ने 35 साल पहले पुणे के पास एक गांव में विज्ञान आश्रम नाम का एक विद्यालय खोला था, जिसका उद्देश्य था विज्ञान और इंजीनियरिंग की प्रायोगिक शिक्षा देना। इस विज्ञान आश्रम को तो खास सफलता नहीं मिली, लेकिन 5 साल पहले 2 युवा इंजीनियरों ने मैसूरु में एक विज्ञान आश्रम प्रयोगशाला खोली थी, जो बहुत लोकप्रिय हो रही है।
जाहिर सी बात है, इन दोनों को पुणे के विज्ञान आश्रम से प्रेरणा मिली होगी।
शायद नहीं, इन दोनों का कहना है कि इन्हें बचपन से ही नई नई चीजें बनाने का शौक था। पढ़ाई के बाद इन्होंने बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में काम किया, लेकिन नौकरी में रुतबा तो था पर वह रोमांच नहीं था जो नई नई चीजें बनाने से मिलता था। इसलिए इन्होंने नौकरी छोड़ी और बच्चों के लिए यह विज्ञान आश्रम प्रयोगशाला खोली।
लेकिन बच्चों के लिए विज्ञान आश्रम प्रयोगशाला ही क्यों, कोई कारखाना या कार्यशाला क्यों नहीं खोल ली इन्होंने?
इन दोनों का कहना है कि हमें अपने बच्चों को सीखने की कला सिखाने की जरूरत है, ताकि वे तेजी से बदलती दुनिया में अच्छे रोजगार पा सकें। आजकल कंपनियों को कृत्रिम बुद्धि के इंजीनियरों, ऐप बनाने वालों, ड्रोन विशेषज्ञों और आभासी खेल बनाने वालों की जरूरत है। 10 साल पहले इस तरह के काम किसने सुने थे? लेकिन बच्चों में ऐसे कामों की प्रतिभा जगाने के लिए उन्हें प्रयोगशालाएं चाहिए और उनमें लगी मशीनों पर हाथ आजमाने की छूट चाहिए। यही सोचकर इन दोनों ने विज्ञान प्रयोगशाला खोली, जिसमें बच्चे निश्चिंत होकर नई नई चीजें बनाने और समस्याओं का हल खोजने का प्रयास कर सकते हैं।
किस तरह की समस्याओं का?
प्रयोगशाला में हाथ के औजारों से लेकर स्वचालित मशीनें और त्रिआयामी प्रिंटर सभी कुछ मौजूद है, जिनका प्रयोग बच्चे समस्याओं का हल खोजने में करते हैं। इस प्रक्रिया को टिंकरिंग कहा जाता है, जिसका मतलब है चीजों को सहज तरीके से सुधारने की कोशिश करना।
लगभग कितने बच्चे आते हैं इस टिंकरिंग प्रयोगशाला में?
इसमें 5,000 से ज्यादा बच्चे हाथ आजमा चुके हैं। ध्रुव का कहना है कि कंप्यूटरों की तरह टिंकरिंग प्रयोगशालाएं भी हर स्कूल का हिस्सा बननी चाहिए, तभी हम युवाओं में छुपी प्रतिभाओं के द्वार खोल सकते हैं। फिलहाल ध्रुव की योजना हर शहर में एक टिंकरिंग प्रयोगशाला खोलने की है।
प्रोफेसर गार्गी कलबाग, युव मंच में आने और टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की रोचक जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे मंच देने के लिए आपका भी धन्यवाद।
अभ्यास तीन की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे। प्रोफेसर गार्गी कलबाग, आज के यू मंच में आपका स्वागत है।
धन्यवाद अरुण जी।
गार्गी जी, बिल गेट्स ने एक बातचीत में कहा था कि आने वाले समय में रोजगार उन्हीं को मिलेंगे जो अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग और विज्ञान के विषय पढ़ेंगे, लेकिन औसत छात्रों को ये विषय कठिन लगते हैं। क्या कोई तरीका है इन्हें सुगम और लोकप्रिय बनाने का?
देखिए अरुण जी, विषय कठिन नहीं होते, पढ़ने और पढ़ाने के तरीके उन्हें कठिन बनाते हैं। स्कूलों में जिस तरह की किताबी रट्टा प्रणाली से विषय पढ़ाए जाते हैं, वह उन्हें कठिन ही नहीं बल्कि जीवन के लिए निरर्थक भी बनाती है। स्कूलों और कॉलेजों से पढ़कर निकलने वाले औसत छात्रों का प्रायोगिक ज्ञान ना के बराबर ही होता है, इसलिए उनको रोजगार पाने में कठिनाई होती है।
आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इसका विकल्प क्या है?
विकल्प है शिक्षा प्रणाली में सुधार, लेकिन इस सुधार की पहल लोगों को करनी होगी और कुछ लोग कर भी रहे हैं। मिसाल के तौर पर शिकागो से पढ़े एक इंजीनियर ने 35 साल पहले पुणे के पास एक गांव में विज्ञान आश्रम नाम का एक विद्यालय खोला था, जिसका उद्देश्य था विज्ञान और इंजीनियरिंग की प्रायोगिक शिक्षा देना। इस विज्ञान आश्रम को तो खास सफलता नहीं मिली, लेकिन 5 साल पहले दो युवा इंजीनियरों ने मैसूरू में एक विज्ञान आश्रम प्रयोगशाला खोली थी, जो बहुत लोकप्रिय हो रही है।
जाहिर सी बात है, इन दोनों को पुणे के विज्ञान आश्रम से प्रेरणा मिली होगी।
शायद नहीं, इन दोनों का कहना है कि इन्हें बचपन से ही नई नई चीजें बनाने का शौक था। पढ़ाई के बाद इन्होंने बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में काम किया, लेकिन नौकरी में रुतबा तो था, पर वह रोमांच नहीं था जो नई नई चीजें बनाने से मिलता था। इसलिए इन्होंने नौकरी छोड़ी और बच्चों के लिए यह विज्ञान आश्रम प्रयोगशाला खोली।
लेकिन बच्चों के लिए विज्ञान आश्रम प्रयोगशाला ही क्यों? कोई कारखाना या कार्यशाला क्यों नहीं खोल ली इन्होंने?
इन दोनों का कहना है कि हमें अपने बच्चों को सीखने की कला सिखाने की जरूरत है, ताकि वे तेजी से बदलती दुनिया में अच्छे रोजगार पा सकें। आजकल कंपनियों को कृत्रिम बुद्धि के इंजीनियरों, ऐप बनाने वालों, ड्रोन विशेषज्ञों और आभासी खेल बनाने वालों की जरूरत है। 10 साल पहले इस तरह के काम किसने सुने थे? लेकिन बच्चों में ऐसे कामों की प्रतिभा जगाने के लिए उन्हें प्रयोगशालाएं चाहिए और उनमें लगी मशीनों पर हाथ आजमाने की छूट चाहिए। यही सोचकर इन दोनों ने विज्ञान प्रयोगशाला खोली, जिसमें बच्चे निश्चिंत होकर नई नई चीजें बनाने और समस्याओं का हल खोजने का प्रयास कर सकते हैं।
किस तरह की समस्याओं का?
प्रयोगशाला में हाथ के औजारों से लेकर स्वचालित मशीनें और त्रिआयामी प्रिंटर सभी कुछ मौजूद है, जिनका प्रयोग बच्चे समस्याओं का हल खोजने में करते हैं। इस प्रक्रिया को टिंकरिंग कहा जाता है, जिसका मतलब है चीजों को सहज तरीके से सुधारने की कोशिश करना।
लगभग कितने बच्चे आते हैं इस टिंकरिंग प्रयोगशाला में?
इसमें 5,000 से ज्यादा बच्चे हाथ आजमा चुके हैं। ध्रुव का कहना है कि कंप्यूटरों की तरह टिंकरिंग प्रयोगशालाएं भी हर स्कूल का हिस्सा बननी चाहिए, तभी हम युवाओं में छुपी प्रतिभाओं के द्वार खोल सकते हैं। फिलहाल ध्रुव की योजना हर शहर में एक टिंकरिंग प्रयोगशाला खोलने की है।
प्रोफेसर गार्गी कलबाग, यू मंच में आने और टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की रोचक जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे मंच देने के लिए आपका भी धन्यवाद।
अभ्यास तीन अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास चार सुनेंगे। अब आप अभ्यास चार के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास चार, प्रश्न 16 से 23।
दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर लेखिका और पत्रकार मालती प्रकाश के विचारों को ध्यान से सुनिए और निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने के लिए ए, बी अथवा सी में से किसी एक विकल्प को सही का निशान लगाकर चुनिए। उनके विचार आपको दो बार सुनाए जाएंगे।
सड़क की भी अपनी एक प्रकृति होती है, उससे गुजरने वाले यात्रियों के साथ उसका अपना ही नाता होता है। सुबह, दोपहर, शाम उसकी सूरत बदलती जाती है। जिस सड़क की मैं बात करना चाहती हूँ वह दिल्ली से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 है, जिसे संक्षेप में NH24 के नाम से जाना जाता है। गाजियाबाद शहर के सीने पर भागती हुई ये सड़क बहुत बेरहम है। हर सड़क की अपनी गति और अपना ठहराव भी होता है। NH24 पर भी गाड़ियां कहीं तो तीव्र वेग वाली लहरों से बहती हैं तो कहीं ऐसे थम जाती हैं जैसे अब इससे पार निकलना मुश्किल होगा। अच्छा ये है कि आप अपने प्रिय गानों की एक लंबी सूची बना लें और यातायात जाम में फंस जाने पर मुक्त कंठ से गाएं। गाड़ियों के शोर में आपकी आवाज किसी को नहीं सुनाई देगी। NH24 को कोई सजीव नाम देना हो तो किसी कुख्यात नाम की तलाश करनी होगी। इसके लिए सुझाव मंगाए जा सकते हैं, क्योंकि यहां यातायात के सारे नियम धराशायी हो जाते हैं। गलती से यदि किसी ने यातायात के नियमों का पालन करते हुए लाल बत्ती पर गाड़ी रोकी तो हो सकता है उसकी जिंदगी की गाड़ी वहीं थम जाए, क्योंकि पीछे से आ रही गाड़ी शायद ही उसे बख्शेगी। ट्रक इस सड़क पर कुछ इस अदा से चलते हैं मानो इसे खालिस उन्हीं के लिए बनाया गया हो। 80 किलोमीटर की गति कब 8 की गति में तब्दील करनी पड़ जाए इसके लिए पांव ब्रेक पर जमे होने चाहिए। वैसे भी सड़क के बीचों बीच बनी विभाजक पट्टी पर लगी हरी झाड़ियों में से कभी भी कोई भी उछलकर सामने आ सकता है। पैदल यात्री नहीं तो कोई मोटरसाइकिल वाला ही अवतरित हो जाएगा। NH24 पर यातायात का कोई एक नियम नहीं। इस सड़क के नियम इस आधार पर तय होते हैं कि आप पैदल चल रहे हैं, मोटरसाइकिल पर हैं, कार में, ऑटो में या फिर बस में बैठे हैं। कई बार सुबह के समय यहां आने और जाने वाली दोनों सड़कों पर एक ही दिशा के मुसाफिर उड़ रहे होते हैं। पैदल पथों पर मोटरसाइकिलें दंदना रही होती हैं तो बचे हर इंच पर कारें। इतनी अराजकता कि लगता है जैसे किसी राजनीतिक दल का जलसा होने वाला हो। यातायात पुलिस होती है मगर लाचार सी। हर सफर यहां आपके अनुभव में कुछ जोड़ता है। मसलन किसी एक सड़क पर रोज चलते चलते आप उसके गड्ढों से परिचित हो जाते हैं। कौन सा मोड़ तेज होगा, कहां ठहराव मिलेगा, सड़क से उतरती हुई बस्तियों की तरफ गाड़ियां आहिस्ता हो जाएंगी क्योंकि यहां लोग अपने घरों का रुख करते हैं। अगर इन सारी बातों को उल्टा कर दें और कभी सड़क के दिल की बात भी सुने किसी नाटक की तर्ज पर तो हो सकता है सड़क अपने ही किसी मोड़ पर गाड़ियों के टूटे हुए शीशे के पास सुबकती हुई मिल जाए। तेज भोंपू बजा रही गाड़ियों से चीख कर कहती हुई कि इतना शोर क्यों मचाते हो बाबूजी, मैं तो बहरी हुई जाती हूं। मैं तो सबको उसके तय समय पर मंजिल तक पहुंचाना चाहती हूं। लेकिन सब आगे निकलने की होड़ में सारे नियम तोड़ देते हैं। सड़क शायद कहे कि पहले बच्चे स्कूल पहुंच जाएं, मरीज अस्पताल, फिर तुम्हें भी दफ्तर पहुंचा दूंगी। NH24 से मेरा हर रोज साक्षात्कार होता है, शह और मात के खेल की तरह। करीब 2 घंटे का समय हर रोज इस सड़क पर गुजरता है। सुबह गाड़ी के शीशे के सामने से चमकता हुआ सूरज मेरी आंखों को चौंधियाता है। शाम को मेरे साथ ही जैसे अपना सफर पूरा करता हुआ ढल जाता है। मैं हर रोज सोचती हूँ कि कभी सूरज को मात देकर घर पहले पहुंच जाऊं। तो जरा सोचिए और बताइए कि इस सड़क का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा जाए।
अभ्यास 4 के इन विचारों को अब आप फिर से सुनेंगे।
सड़क की भी अपनी एक प्रकृति होती है, उससे गुजरने वाले यात्रियों के साथ उसका अपना ही नाता होता है। सुबह, दोपहर, शाम उसकी सूरत बदलती जाती है। जिस सड़क की मैं बात करना चाहती हूँ वह दिल्ली से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 है, जिसे संक्षेप में NH24 के नाम से जाना जाता है। गाजियाबाद शहर के सीने पर भागती हुई ये सड़क बहुत बेरहम है। हर सड़क की अपनी गति और अपना ठहराव भी होता है। NH24 पर भी गाड़ियां कहीं तो तीव्र वेग वाली लहरों से बहती हैं, तो कहीं ऐसे थम जाती हैं जैसे अब इससे पार निकलना मुश्किल होगा। अच्छा ये है कि आप अपने प्रिय गानों की एक लंबी सूची बना लें और यातायात जाम में फंस जाने पर मुक्त कंठ से गाएं। गाड़ियों के शोर में आपकी आवाज किसी को नहीं सुनाई देगी। NH24 को कोई सजीव नाम देना हो तो किसी कुख्यात नाम की तलाश करनी होगी। इसके लिए सुझाव मंगाए जा सकते हैं, क्योंकि यहां यातायात के सारे नियम धराशायी हो जाते हैं। गलती से यदि किसी ने यातायात के नियमों का पालन करते हुए लाल बत्ती पर गाड़ी रोकी तो हो सकता है उसकी जिंदगी की गाड़ी वहीं थम जाए, क्योंकि पीछे से आ रही गाड़ी शायद ही उसे बख्शेगी। ट्रक इस सड़क पर कुछ इस अदा से चलते हैं मानो इसे खालिस उन्हीं के लिए बनाया गया हो। 80 किलोमीटर की गति कब 8 की गति में तब्दील करनी पड़ जाए, इसके लिए पांव ब्रेक पर जमे होने चाहिए। वैसे भी सड़क के बीचों बीच बनी विभाजक पट्टी पर लगी हरी झाड़ियों में से कभी भी कोई भी उछलकर सामने आ सकता है। पैदल यात्री नहीं तो कोई मोटरसाइकिल वाला ही अवतरित हो जाएगा। NH24 पर यातायात का कोई एक नियम नहीं। इस सड़क के नियम इस आधार पर तय होते हैं कि आप पैदल चल रहे हैं, मोटरसाइकिल पर हैं, कार में, ऑटो में या फिर बस में बैठे हैं। कई बार सुबह के समय यहां आने और जाने वाली दोनों सड़कों पर एक ही दिशा के मुसाफिर उड़ रहे होते हैं। पैदल पथों पर मोटरसाइकिलें दंदना रही होती हैं तो बचे हर इंच पर कारें। इतनी अराजकता कि लगता है जैसे किसी राजनीतिक दल का जलसा होने वाला हो। यातायात पुलिस होती है मगर लाचार सी। हर सफर यहां आपके अनुभव में कुछ जोड़ता है। मसलन किसी एक सड़क पर रोज चलते चलते आप उसके गड्ढों से परिचित हो जाते हैं। कौन सा मोड़ तेज होगा, कहां ठहराव मिलेगा। सड़क से उतरती हुई बस्तियों की तरफ गाड़ियां आहिस्ता हो जाएंगी, क्योंकि यहां लोग अपने घरों का रुख करते हैं। अगर इन सारी बातों को उल्टा कर दें और कभी सड़क के दिल की बात भी सुने किसी नाटक की तर्ज पर, तो हो सकता है सड़क अपने ही किसी मोड़ पर गाड़ियों के टूटे हुए शीशे के पास सुबकती हुई मिल जाए। तेज भोंपू बजा रही गाड़ियों से चीख कर कहती हुई कि इतना शोर क्यों मचाते हो बाबूजी, मैं तो बहरी हुई जाती हूं। मैं तो सबको उसके तय समय पर मंजिल तक पहुंचाना चाहती हूं, लेकिन सब आगे निकलने की होड़ में सारे नियम तोड़ देते हैं। सड़क शायद कहे कि पहले बच्चे स्कूल पहुंच जाएं, मरीज अस्पताल, फिर तुम्हें भी दफ्तर पहुंचा दूंगी। NH24 से मेरा हर रोज साक्षात्कार होता है, शह और मात के खेल की तरह। करीब 2 घंटे का समय हर रोज इस सड़क पर गुजरता है। सुबह गाड़ी के शीशे के सामने से चमकता हुआ सूरज मेरी आंखों को चौंधियाता है। शाम को मेरे साथ ही जैसे अपना सफर पूरा करता हुआ ढल जाता है। मैं हर रोज सोचती हूँ कि कभी सूरज को मात देकर घर पहले पहुंच जाऊं। तो जरा सोचिए और बताइए कि इस सड़क का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा जाए।
अभ्यास 4 और यह परीक्षा समाप्त हुई।
दिस इज द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन।